على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. फोन बंद कर देंगे, मैं भी अपना बंद कर देती हूँ तो अच्छा होगा इंशाअल्लाह। اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی کھیل اور تماشا ہے، دل لگی ہے اور زینت اور فخر ہے آپس میں، اور کثرت مال اور اولاد کی ایک دوسرے کے اوپر کثرت جتانا. کمثل غیث اعجب الکفار، ایسے جو ہے باتوں کو تم میں جو پتہ رہا ہوں پر پھر وہ ایک دن ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے، ایسے پیلی پڑ جاتی ہے. تم میں یقون و خطامہ، اور پھر اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. وفل آخرت عذاب شدید، اور اس کے بعد عذاب شدید ہے آخرت میں. وہ مغفرت من اللہ و ردوان، اور اللہ کی مغفرت بھی آخرت میں اور اس کی رضا بھی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انسان کا علم اور عمل، یہ دو چیزیں ہیں. عمل اگر انسان کا بھٹک جائے، عمل نہ ہو، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. لیکن اگر علم گمراہ ہو جائے، علم غلط ہو جائے، تو انسان اتنی بڑی ہلاکت میں جا گرتا ہے کہ پھر وہاں سے سوائے اللہ تعالیٰ ہی اس کو نکالنے سے نکل سکتا ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج انسانیت کا علم غلط ہو گیا. وہ کیسے ہوا کہ انہوں نے جس کو رب بنانا تھا نا، خدا بنانا تھا، اس کو خدا نہیں سمجھا. آج کا خدا کون ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں تو آج کا خدا ہے مال، مٹیریل، پیسہ. انسان کہتا ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ ہے تو اقتدار ہے، پیسہ ہے تو دھوم دولت ہے، پیسہ ہے تو سٹیٹس ہے، پیسہ ہے تو شادی ہوگی، پیسہ ہے تو سارے کام بنیں گے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ آج کے انسان کا ایمان ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان کہلائے. جب علم ہی غلط ہو گیا، بنیاد ہی غلط ہو گئی، تو آگے پھر سوچے کہ عمل کا کیا حال ہوگا. اس کے اوپر آج عمل کی بنیاد اس عقیدے کے اوپر ہے. اسی لیے آج زندگیوں میں دیکھیں برکت اٹھ گئی، چین ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا، کیونکہ جس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے سراب. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو کیا فرمایا؟ سراب. آپ نے معراج دیکھا ہے کبھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کی جو دوڑ ہے نا، یہ ایسے ہے جیسے معراج، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سراب. کہ مسافر کیا سمجھتا ہے؟ پانی ہے. پیاسا کیا سمجھے گا؟ پانی ہے. دوڑو پانی کے لیے. لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا، وہ اور آگے دکھے گا، اور آگے دکھے گا، اور آگے دکھے گا. وہ جب وہاں پہنچے گا تو لگے گا اور آگے، وہ تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں. کوئی اگر اس کو کہے کہ سنو وہ پانی نہیں ہے، وہ تو سراب ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہوں پانی ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اچھا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں وہاں تک پہنچوں، اس لیے تم ایسے کہہ رہے ہو، تم مجھ سے حسد کرتے ہو، تم چاہتے نہیں ہو یہ مجھے مل جائے. وہ کہتا ہے نہیں، یہ پانی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگو گے، یہ سراب ہے. وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہمیں نہ سمجھاؤ یہ باتیں. اور وہ دوڑتا ہے، دوڑتا ہے، دوڑتا ہے، اور دوڑ دوڑ کے ایک دن زندگی کی شام ہو جاتی ہے. اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ پانی تھا، تو وہاں پہ پھر کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب اس کی حالت کیا ہو چکی ہے؟ اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا ضعیف ہو گیا ہے، ساری زندگی گزر چکی ہے اور ابھی تک پانی تک نہیں پہنچ سکا. یہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے. اس کے پیسے، دولت، سٹیٹس، जो भी हविस भूख है ना, ये ऐसे ही है जैसे ये शराब, कि आप दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, लेकिन क्या होता है, वो उससे आगे नजर आता है, हत्ता कि आपकी जिंदगी का इख्तिताम आ जाता है, जिंदगी की शाम हो जाती है, लेकिन उस वक्त भी क्या लगता है, नहीं अभी थोड़ा और आगे, और एक दिन इंसान हार जाता है, तब उसको ये एहसास होता है कि नहीं, मैंने जिसके पीछे अपनी ये सारी जिंदगी गंवा दी वो तो शराब था, लेकिन अब आगे क्या लिखा होता है, नो यू टर्न, अब कोई यू टर्न नहीं है, अब वापस जाके अपनी जिंदगी सुधार नहीं सकते, अब वापस जाके वो वक्त नहीं ला सकते, वो लम्हात नहीं ला सकते, वो चला गया, वो गुजर गया। यही इस सारी जिंदगी की मिसाल है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दी है कि ये जिंदगी क्या है, लाएब लाहव, लाएब खेल तमाशा, खेल है क्या, इंसान जब बचपन में होता है क्या, खेल 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 खेल, आप देखें बच्चे खेल के पीछे कितने क्रेजी हैं, फिर उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं दिल लगी, फिर उसके बाद उसके अंदर अट्रैक्शन शुरू होती है अपने ऑपोजिट सेक्स से, कि लड़कों को लड़कियों में दिलचस्पी, लड़कियों को लड़कों में दिलचस्पी होने लगती है, उनके लिए फिर वो सारी सोचें और वो उनकी बदल जाती है, सोचने का मयार बदल जाता है, तो दिल लगी एक हो गई। उसके बाद जीनत, उसके बाद क्या, थोड़े और बड़े हुए, थोड़ी और मेच्योरिटी आई, शादी वादी हो गई, जीनत, अब दिखावा, ये पहनूं, कितने कितने पैसे खर्च करते हैं एक एक लिबास के लिए, एक एक जोड़े के लिए, एक दिन के पहनने के लिए कितना कुछ खर्चा होता है, एक एक ज्वेलर की दुकान पे, एक एक दर्जी की दुकान पे कितना टाइम लगता है। अच्छा, वो दौड़ ऐसी हो गई कि फिर वो जीनत के पीछे दौड़ा, जीनत जीनत, मैं खूबसूरत लगूं, मैं सबसे ज्यादा नुमायाँ लगूं, जिस मजलिस में जाऊं मैं उसकी जान बन जाऊं। हालांकि देखा जाए तो सुभान अल्लाह, जिस मजलिस में भी आप जाते हैं, वाकई ऑनेस्टली कहें, हर एक को अपनी पड़ी होती है, देखा जाए ना, उसको ये लग रहा होता है मैं कैसी लग रही हूँ, ये नहीं होता कि कोई और क्या लग रहा है, कोई आपको नहीं देखता, हर एक अपने आप को देख रहा है, मेरे बाल ठीक है, मेरे कपड़े ठीक है, मेरा मेकअप ठीक है, मेरी लिपस्टिक डिम तो नहीं हो गई, हर एक को अपनी फिक्र है। अगर किसी को दूसरे का इतना ही एहसास हो ना, तो देखें सुभान अल्लाह, इंसान ये भी नहीं गवारा करता कि मेरे जैसा कपड़ा किसी और ने पहना, अपने जैसा कपड़ा भी नहीं देखना चाहता, किसी और ने पहना हुआ था ना, आपके बाद मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगा, ये तो उसके उसने भी कॉपी कर लिया, उसके पास भी। अगर तो आप वाकई हमदर्द होते, खैर खा होते, तो आप देख के खुश होते, लेकिन आपको देख के क्या हुआ, मेरी जैसी क्यों लगी, मैं जो हूं वैसा कोई और ना हो, तो फिर क्या मैं की ही दौड़ है ना, मैं, मेरा हुसन, मेरी खूबसूरती, मेरा सब कुछ, मैं सबसे नुमाया हूं, मैं सबसे ऊपर, जीनत। फिर उसके बाद तफाखुर बैनकुम, फिर उसके बाद थोड़ी और मैच्योरिटी की एज आती है, तो क्या है, अब फखर आपस में, अब जाहिर है इंसान के पास फिर थोड़ा ऐसे ही एज आ जाती है, एक के थोड़ा पैसा वैसा आ जाता है, कुछ सेटल हो जाता है, फिर क्या करने लगता है, फखर करने लगता है दूसरों को, हमारा घर देखो आके, हमारी गाड़ी देखो, लोगों को बुलाओ आओ हमारा घर देखे, हमारी चीजें देखे, फिर वो चीजें पहन पहन के जाता है कि लोग देखें और तारीफ करें, फखर फखर। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत इंसान की जो उसकी साइकी है ना बयान फरमाई है सूरह हदीद में, उसके बाद क्या होता है, वक्त तकाथरु फिल अमवाली वल औलाद, उसके बाद और थोड़ा बढ़ जाता है, तो अब ना वो हुसन रहा, ना वो लश पश रही, अब क्या है, अब किस चीज के ऊपर, अपने माल पे और औलाद की कसरत के ऊपर फखर, कैसे औलाद मेरी देखे, मेरे बच्चे फां फलां जगह लग पढ़ने जा रहे हैं, और मेरे बेटे को वहां एडमिशन मिल गया है, और मेरी बेटी को उधर जॉब मिल गई है, और आज हमने वहां पे प्लॉट ले लिया है, और हमने वहां पे हमारा बैंक बैलेंस इतना हो गया, और फिर ये फखर एक दूसरे पे कसरत के। अल्लाह ताला ने फरमाया इसकी मिसाल कैसी है, सुभान अल्लाह, जैसे एक किसान है ना, उसने एक फसल लगाई, और वो फसल देख देख के बड़ा खुश होता है, इंसान की जिंदगी स्टार्ट होती है ना, बड़ा खुश होता है कि हाँ घर भी है, बच्चे भी हैं, रेल पेल है, और उसके बाद क्या होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता तुम मैं यही जो फतरा हूँ मुस्फरा, फिर वो देखता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी चमक, उसकी वो मांद पड़ने लगी है, वो जैसी थी अब वैसी नहीं रही, पीली होने लगी, देखा ना आपने खेतियों को क्या पीली पड़ने लगती है, उसके बाद क्या है, तुम मैं यकून होता, फिर रेजा रेजा हो जाती है, चूरा चूरा हो जाती है, वही फसल होती कट जाती है, उसके बाद खेत का हाल क्या होता है। तो वो बंदा भी देखता है कि मेरे घर में बहुत रौनक और खुशियाँ और मेले और ये आना जाना ये, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हर चीज़ मांद पड़ने लगती है। ना जिस्म में वो कुव्वत रहती है, ना वो ताकत रहती है, औलाद बड़ी हो जाती है, घर छोड़ के चली जाती है, वही घर होता है, फिर उसमें बूढ़े माँ बाप अकेले बैठे रह जाते हैं। अब क्या है, अब ये रेजा रेजा हो गई, ख़त्म हो गई, और फिर वही घर छोड़ के सब चले जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये है मिसाल इस दुनिया की ज़िंदगी की, और आखरत में दो चीज़ें, या तो अजाब है या अल्लाह की रज़ा है। और देखना वमल हयात दुनिया इल्ला मताल गुरूर, देखना दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं है। जिसके तुम पीछे भाग रहे हो ना, वो शराब वाली मिसाल, ये धोखा है, ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ये नहीं है। सब चीजें एक दिन मांद पड़ जाएंगी, सब चला जाएगा, ये सब दूर हो जाएगा, ये वो नहीं है जिसको तुम समझते हो, ये सब ने हमेशा ऐसे ही रहना है। हम भी इसी तरह रहेंगे, हमारे बच्चे भी इसी तरह रहेंगे, हमारे घर बार भी इसी तरह रहेंगे। लगता है ऐसे जैसे हर रोज इसी तरह सूरज निकलेगा और इसी तरह गुरूब उजर करेगा और हम भी इसी तरह ही रहेंगे, हालांकि तुम्हें वो ढलती हुई उम्र नजर नहीं आ रही, वो ढलता हुआ वक्त नजर नहीं आ रहा। जैसे दिन चढ़ता है और एक दिन एक वक्त आता है, जैसे ये टाइम है दोपहर का वक्त, जो बन पे इस वक्त दिन, ये ऐसा तो नहीं रहेगा, थोड़ी देर में क्या होगा, शाम होने लगेगी, और फिर इंसान को पता भी नहीं चलता कि रात छाने लगती है, अंधेरा छाने लगता है, पता ही नहीं चलता ना, एहसास ही नहीं होता। हम देखा तो शाम हो गई, ओ अब तो मगरिब का टाइम हो गया, रात होने लगी। यही जिंदगी, आज अगर जिंदगी का जोबन है, आप पीक पे है ना, तो ढलान आने ही वाली है, डाउन द हिल जाने ही वाले हैं। ये सबसे बड़ा धोखा इंसान का कि मैंने यहीं रहना, नथिंग इज गोना चेंज। अल्लाह ताला फरमाते हैं यालमून दाहिरम मिनल हयात दुनिया, इनको दुनिया के जाहिरी का तो बहुत इल्म है, आज सबको पता है आज का फैशन क्या है, आज इन्वेस्टमेंट किस जगह पे ज्यादा फायदा मंद है, आज स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, कौन सा प्रोफेशन है जो बूम कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री है जो आगे जा रही है, ये सब पता है, सियासत में क्या हो रहा है। लेकिन वहुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, लेकिन आखिरत से देखो तो ये गाफिल बैठे हुए, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने कहाँ जाना है, इतनी गफलत है कि आज मरने का भी टाइम नहीं किसी के पास, यकीन कर आज ये हाल हो गया, कहते टाइम ही नहीं, आखिरत का सोचने का वक्त ही नहीं है, क्योंकि हम इतनी दौड़ में लगे हुए, हमारे पास सांस लेने का भी वक्त नहीं कि हम रुक के सोच ही लें हम किधर जा रहे हैं, किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, इसका एंड कहाँ है, कब बस होगी कि इंसान कहे अब बस, अब ब्रेक लगा दो, अब बस करो, बहुत भाग लिया मैंने। नहीं, हम तो 70-80 साल के भी लोगों को देखते हैं ना, तो आज वो भी हाथ में रिमोट है और रिमोट फ्लिप हो रहा है और ड्रामे पे ड्रामे और नंगी फिल्में और ये सब चल रहा है, वो भी प्लान बना रहे हैं कहाँ पे वेकेशन पे जाएं, कौन सा क्रूज लें, वो भी ये मंसूबे बना रहे हैं कि किधर इन्वेस्टमेंट अब और होनी चाहिए, यानी पैर कब्र में है, टांगे कब्र में लटकी हुई है, लेकिन उस वक्त तक भी इंसान को होश नहीं आता, वो फिर आगे की सोच रहा है, इसी दुनिया में और आगे तरक्कियों की सोच रहा है, वो फिर भी ये नहीं सोचता कि मुझे आगे कहीं और जाना है, अपने अल्लाह से मिलना है, उसके आगे खड़े होना है, वहां पे मैं क्या जवाब दूंगा। और याद रखें, ये अल्लाह ताला की किसी से मोहब्बत की निशानी होती है कि अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ मोड़ ले, और ये अल्लाह ताला की किसी से नाराजगी की निशानी है कि जाओ दुनिया में जाकर तुम मोड़ जाओ। आप किसको अपनी तरफ चाहते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको अपने पास बिठाते हैं, उसकी तवज्जो चाहते हैं, और जिसको आप पसंद नहीं करते आप कहते हैं जाए जहां मर्जी घूमता रहे मुझे क्या। तो जिसको अल्लाह ने दुनिया में गुम कर दिया ना, ये इस बात की निशानी कि अल्लाह उसे राजी नहीं है, और जिसको अल्लाह ने अपनी तरफ मोड़ लिया, हमेशा मुझे काबिले रश्क लगते हैं वो लोग जो या तो रिवर्टेड मुस्लिम है, अल्लाह तुझे इनसे कितनी मोहब्बत होगी, ये तूने इसको जहन्नुम के किनारे से वापस अपनी तरफ मोड़ लिया। और कोई दुनिया में गुम होता है और फिर उसको देखते हैं कि उसकी जिंदगी बदल गई, फिर कितना रश्क आता है कि अल्लाह तुझे इससे कितनी मोहब्बत होगी कि तूने ये रुख को अपनी तरफ कर लिया, कि आ जा मेरा बंदा मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है और इसकी मोहब्बत की ये निशानी है। अपनी जिंदगियों में हम देखें हमारे रुख किस तरफ है और हमारे किबले क्या हैं, हमारी सोच और फिकरात क्या हैं। अल्लाह ताला तो हमसे कुछ नहीं मांगता। अभी ये गाड़ी में यही बात कर रहे थे कि ये कह रही थी कि बच्चों को भेजते हैं कहीं दूर, या वो भेजते हैं तो उस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है जो दूर चला जाता है, जो डॉर्म में है या कुछ है। बाकी जो बच्चे घर में होते हैं उनसे इतना, उनसे भी मोहब्बत है, लेकिन जो बच्चा दूर गया तो उससे ज्यादा मोहब्बत हो जाती है ना। अल्लाह ताला को मोहब्बत होती है अपने उन बंदों से जो ज्यादा दूर चले जाते हैं, वो चाहता है कि वापस आ जाए। ये नहीं कि वो नहीं चाहता उनसे नाराज चले, नहीं, वो चाहता है कि ये वापस आ जाए, वो उनसे मोहब्बत करता है। लेकिन ये बंदे अपना रुख अल्लाह की तरफ नहीं मोड़ना चाहते, तो अल्लाह ताला भी कह देते हैं फिर जाओ, कि तुम ठीकरों पे ही मरे चले जा रहे हो, इस हकीर पे मरे चले जा रहे हो जिसने किसी से वफा नहीं की इस दुनिया में। देखें यहाँ पे बड़े बड़े जालिम बादशाह भी आए, बड़े बड़े हुक्मरान भी आए, पैगंबर भी आए, औलिया अल्लाह भी आए, और भी लोग आए, ताकतवर बड़े बड़े पहलवान भी आए, लेकिन क्या हुआ, कोई रहा यहाँ पे? कहाँ चले गए वो सब लोग? सिकंदर आजम कहाँ है आज? ये बताएं चंगेज खान कहाँ है, जिसने खोपड़ियों के मीनार बनाए, वो कहाँ है आज? फिरौन किधर है? वो जो कहते थे अना रब्बुकुम अला, मैं तुम्हारा आला रब हूं, वो किधर है आज? किधर गई उसकी बड़ाई, किधर गई उसकी ममलिकत? नमरूद किधर है? बड़ी बड़ी शहजादियां गुजरी जमाने में, बड़ी बड़ी मलकाएं, मुगलों का दौर देख लें, आज भी उनके महलों के और उनके जो ताज महल है और ये सब आपको नजर आते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ हैं, किधर चले गए? कभी जाके खंडरात में खड़े होके पूछें और आवाज दें उन लोगों को, कहाँ हो तुम, किधर गए? सब खत्म हो गया क्या? ये ऐसे ही नहीं है जैसे कि खेती चूरा चूरा हो गया, सब खत्म हो गया। ये दुनिया बताती है और तारीख बताती है, अगर कुछ और नहीं कहीं देखा, कोई सैर करके नहीं देखा, हिस्ट्री उठा के देख लो, तारीख की औराक देखो पलट के, लोगों का क्या अंजाम हुआ। बड़े बड़े लोग थे और मिट गए, अल्लाह ने सफाए हस्ती से मिटा दिया। जो अल्लाह को भूल गए अल्लाह ताला ने उनके नामो निशान तक मिटा दिए। आज कोई भी आपको नजर नहीं आएगा, वहां उन खंडरात में जाओ वीरानियां ही वीरानियां, हवा की सरसराहट के अलावा कुछ भी नहीं। आप जाए मोहनजोदड़ो हड़प्पा, और चलो नहीं कहीं आप जा सकते दूर, कब्रिस्तान में जाके देख लो कितनी वीरानी है, क्या है वहां पे। ये इन लोगों से जरा पूछ के तो देखा करें, क्या तुम्हारा दिल चाहता था कि तुम यहाँ पे आके सो जाओ? अपनी पसंद से आयो, अपने शौक से आयो, किसका दिल चाहता है हंसते बसते घर छोड़ के और वीरानों में जाके बसे? किसी का दिल नहीं चाहता। किसका दिल चाहता है घरों में अपने बेडरूम में जो सजाए हुए हैं कीमती फर्नीचर से, वो छोड़ के कहाँ कहाँ से हम ऑर्डर करते हैं बेडरूम का फर्नीचर, कैसे कैसे मसहरियाँ हैं, कैसी कैसी और चीज़ें हैं, वो सब छोड़ के ईंट है जो सर के नीचे है और ऊपर भी मट्टी का बिछोना और नीचे भी मट्टी का बिछोना और ऊपर भी ओढ़ना उसी का, किसका जी चाहता है ये? घरों में खूबसूरत शैंडलियर्स लगाते हैं, रोशनियाँ ही रोशनियाँ हैं, आज जाके देखो उनके दिन भी अंधेरे हैं और उनकी रातें भी अंधेरी हैं, वो अंधेरों में पड़े। देखो ये वही लोग थे ना कि दुनिया के अंदर एक एक जोड़े के लिए कितने कितने टाइम दर्जी के चक्कर लग रहे हैं। आप क्या है, एक चीथड़ा भी नहीं है उनके ऊपर, उनके कफन भी गल चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास महंगे से महंगे परफ्यूम है, हम कहते हैं मैंने ये कलून ये परफ्यूम लगाया, आज अगर वो उनकी कब्रें खोद के देखे तो ऐसे बदबू के भभूके होंगे कि आप भाग जाएं। ये है जिंदगी, ये है हकीकत, ये धोखा है धोखा जिसमें पड़े हुए हो, किधर जा रहे हो? अल्लाह को छोड़ के भी किसी को चैन आया? अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ आओ, ये तो मैंने तुम्हारे इम्तिहान के लिए बनाई है कि मैं देखूं तुम में से कौन है जो इसमें रहते हुए भी मुझे याद रखता है, तुम में से कौन है जो यहां रहते हुए भी मुझे नहीं भुलाता, कौन है तुम में से? लेकिन आज हम सब इसकी चकाचौंध में ऐसे हैं कि हम भुलाए हुए हैं हमारा खालिक कौन, हमारा मालिक कौन, हमारा राज़िक कौन, हमारा मुश्किल कुशा कौन, हमारा पालने वाला कौन। एक एक सांस उसकी बीवी ले रहे हो, एक सांस वो बंद कर देना एक लम्हे के लिए, तो यहाँ पे हम तड़पना शुरू हो जाए और तड़प तड़प के ये कहें कि सब कुछ ले लो लेकिन मुझे एक सांस दे दो। एक सांस के भी हम मोहताज हैं कि वो एक सांस भी कह दे कौन तो हमें सांस आएगी, वो कह दे कौन तो हमारी सांस चली जाएगी। एक एक सांस के लिए उसके मोहताज हो। लेकिन उससे बेनियाज ऐसे हैं कि हम हमारे पास टाइम नहीं, ना नमाज का टाइम, ना कुरान का टाइम, ना उसकी फर्माबरदारी वाली जिंदगी गुजारने का वक्त है। क्यों, हम तो इतने बिजी हैं भाई, किसके पास टाइम है? अरे बूढ़ों का शौक होगा या उन लोगों का जिनके पास कोई टाइम नहीं है। हमारे पास इतने जंबेले हैं, जिसको पूछो कोई कहता है मेरे पास जॉब का धंधा है, कोई कहता है घर के जंबेले, कोई कहता है बच्चों के हैं, कोई कहता है आपको क्या पता हमारी कितनी मसरूफियात है। अरे तुम सभी मसरूफ हो, लेकिन मौत के फरिश्ते ने नहीं पूछना कि तुम कितने मसरूफ हो। उसने जब आना है ना तो किसी से यस नहीं लेनी। अगर यस ली होती तो आप देखते कब्रिस्तानों में तो कोई भी ना होता, सब यहीं बैठे होते। लेकिन इंसान कितना भूल के चलता है कि वो दर्जी के पास भागा जा रहा है कपड़े सिलवाने के लिए और उधर उसके कफन का कपड़ा आ चुका होता है स्टोर में, वो रख रही है, उसको पता नहीं है। कितने ही लोग ऐसे हैं आप देखते हैं, सुबह करते हैं अच्छे भले होते हैं, यकीन करें इतनी ज्यादा इबरत आती है कि शाम को हम उनका जनाजा पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं मगरिब से पहले पहले दफना दो। सूरज गरूब होता है तो वो कब्र में भी पहुंच चुके होते। कितने जनाजे ऐसे अटेंड किए, सुबह की थी अच्छे भले थे, उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आपके सामने कितनी मिसालें ऐसी होंगे, कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं कि अल्लाह ताला को भुला के और उस दिन में सारा वक्त अल्लाह को याद नहीं किया और शाम से पहले पहले अल्लाह के आगे पेशी है उनकी। ये कब्र में मुनकर नकीर सवाल जवाब का कभी सोचा भी नहीं कि इतनी जल्दी इख्तिताम हो जाना, क्योंकि इंसान की जवानी में जाना पड़े या बुढ़ापे में, वो कहता है अभी तो मेरा टाइम ही नहीं, अभी इतनी जल्दी। बूढ़े से बूढ़े भी से भी पूछ लो वो कहेगा इतनी जल्दी, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं। और जब इंसान अल्लाह के पास जाएगा ना तो पूछा जाएगा कम लबिस तुम, कितने ठहरे तुम, तो वो क्या कहेगा लबिसना यौमन औ बादा यौम, हम तो ठहरे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, अशियतन औ दुहाहा, थोड़ा सा शाम का पहर या थोड़ा सा दिन का पहर, हम तो ज्यादा रहे ही नहीं दुनिया में। अरे पूछ ले ये गिनती करने वालों को पूछ ले, इनको ज्यादा पता है, ये इनकी याददाश्त बड़ी थी, इनसे पूछे ये बताएंगे आपको हम कहां इतनी देर ठहरे, हम तो बहुत कम ठहरे। वाकई ऐसे लगेगा कि वाकई दिन भी पूरा नहीं गुजारा हमने दुनिया में, दिन का इतना सा हिस्सा गुजारा और देखो इतना सा टाइम गुजारने के लिए तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना भाग रहे हो कि तुम्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं, कितना इतना छोटा सा वक्त है और उस थोड़े से वक्त में भी तुम अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं कर सकते, इस थोड़े से वक्त में भी नहीं तुम ये साबित कर सकते कि अल्लाह मैं यहाँ पे रहते हुए इतनी डिस्ट्रैक्शंस है उनमें रहते हुए भी मैं तुझे नहीं भूली, इतनी थोड़ी देर के लिए भी नहीं तुम साबित कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे तुम अपनी उंगली जो है वो समंदर में डबो और उंगली निकालो, तो इस पे जितना पानी लगा हुआ ना ये दुनिया की जिंदगी है और आखरत क्या है ये जैसे ये समंदर है, ये इतनी शॉर्ट है, इतनी टेम्परेरी है और इतनी शॉर्ट के लिए तुम क्या क्या पापड़ बेल रहे हो कि उस हायर कयूम जात को ही भूल कर तुम उस जात को जो 70 माओ से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाला है। कि अल्लाह ताला फरमाते ना इंसान को कि इंसान के ऊपर एक वक्त आया हल अता हीनु मिन दहरि लम यकुन शैअन मदकूरा, ए इंसान तेरे ऊपर एक वक्त ऐसा भी आया था कि तू कोई काबिले जिक्र चीज ही नहीं था, तू कुछ भी नहीं था। आप सोचें चले आपकी जो भी एज है उसमें एक साल ऐड कर ले या चले 100 साल पहले, इतना तो कोई भी नहीं है इस एज का, 100 साल पहले हम कहां थे, हमारा कोई नामो निशान था, कोई हमारा जिक्र था, कोई हम चीज थे जो काबिले जिक्र हो कि भाई ये फला आयशा या सादिया या राबिया ये कोई पैदा होनी है या ये कोई होगी, कोई हस्ती, कोई जात नहीं, कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। और अल्लाह ताला ने तुम्हें एक वजूद दिया। हमें चूहा नहीं बना दिया, हमें सांप नहीं बना दिया, हमें रींगने वाला कीड़ा नहीं बना दिया, हमें चींटी नहीं बना दिया कि लोग पैर के नीचे मसल देते। बन सकते थे ना, आपने कौन सी एप्लीकेशन दी थी कि मुझे ये बनाना और मुझे इस घराने में मैं पैदा हूँ जहाँ पे सारी सहूलियात हों। आप किसी अफ्रीका के किसी गांव में भी पैदा हो सकते हैं, यहाँ पे ना तन पे कपड़ा होता और ना खाने के लिए दो लुकमे होते, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको वजूद दिया और आपको खाने पीने को दिया और पैदा किया तो उससे पहले सारा इंतजाम करके रखा हुआ था, आपके खाने का, आपके पीने का, आपके रहने का, आपके मुताबिक टेम्परेचर, इवन माँ के पेट में भी अल्लाह ताला ने हर चीज उसके मुताबिक जो आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सस्टेनेंस के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी थी, हर चीज उस तरह से परफेक्ट बनाई। दुनिया में आए तब भी हर चीज आपके लिए तैयार थी। आप में से कितने लोगों ने ये कहा कि मुझे माँ का दूध चाहिए, या कितने लोगों ने ये कहा कि सूरज तुलू होना चाहिए, कितने लोगों ने कहा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, कितने लोगों ने कहा कि मेरे दिल को धड़कना चाहिए, किडनीज को ऐसे फंक्शन करना चाहिए, लिवर को ऐसे काम करना चाहिए, कितने लोगों ने कहा या कितने लोगों ने इसके लिए मेहनत की, किसी ने। तो सब अल्लाह ताला ने पहले से दिया, फिर भी अल्लाह ताला फरमाते इन्नल इंसान अली रब्बी ही लकनूत, इंसान अपने रब का बड़ा ही ना शुक्र, बड़ा ना शुक्र है कि देखो कि तुझे इतना भी नहीं ये ख्याल आया कि वो तेरा रब जिसने तुझे ये सब कुछ दिया तो उसी को दुनिया में आके इतना मस्त हो गया कि उसी को तूने भुला दिया, उसी का तिन्ने ही तूने ख्याल किया। अभी ये कह रही थी अपनी गाड़ी में बता रही थी बात के जो है ना, इन्होंने बेटे से कुछ कहा लाने के लिए और उसने नहीं लाके दिया तो इन्होंने उसको क्या कहा, सब हम यही करते हैं। इन्होंने बेटे को क्या कहा कि मैंने तुमसे एक चीज मांगी थी और तुमने वो ही नहीं दी, और देखो बचपन में मैंने तुम्हें क्या क्या दिया और क्या क्या तुम्हारे लिए किया, और तुम एक चीज मांगते थे और मैं तुम्हें क्या। यही मिसाल यहाँ पे रख के देख ले, हमने जो कहा और जो नहीं कहा, जो हमने मांगी चीजें वो तो बहुत कम है, बिन मांगे अल्लाह ने कितना कुछ हमें अता किया, बिन मांगे। आप अगर गिने ना तो बिन मांगे आपको ज्यादा चीजें मिली हैं, मांगने का तो हमें खुद भी नहीं पता कि हमने अपनी हमारी जरूरियात क्या, हमने क्या मांगना, और अल्लाह ने हमसे सिर्फ एक चीज मांगी, मेरी फरमा बरदारी करना, जैसे मैं कहूँ वैसे चलना, और तुम वो भी नहीं कर सकते। दुनिया में जाओ तो ये ना हो कि वहीं पे खो जाओ, मुझे याद रखना हो, दुनिया को खुदा ना बना लेना, मुझे खुदा बना के चलना, और हम वो एक काम ही नहीं कर सकते कि हम उसके गुलाम बन के रहते, हम इस दुनिया के गुलाम बन गए, इसके पुजारी बन गए। सब माएं अपने बच्चों से ही एक्सपेक्ट करती है, हालांकि हमारी सर्विस कितनी होती, बच्चे को 2, 4, 5 साल, 10 साल हमने देखा बड़े उससे, उसके बाद या 20 साल देख लिया होगा, उसके बाद तो बच्चे इंडिपेंडेंट है। अल्लाह ताला तो जब से पैदा हुए उससे पहले से और सारी जिंदगी उसके एहसानात है कि खत्म ही नहीं होते। फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमत को झुठलाओगे, इतने उसके एहसानात तुम्हारे ऊपर फिर भी तुम उसको भूलते हो। तुम अगर वफादारी सीखना चाहते हो एक घोड़े से ही सीख लो, जानवर से ही सीख लो वफादारी। सूरह आदियात में अल्लाह ताला ने घोड़े की मिसाल बयान फरमाई है कि घोड़े को देख लो, घोड़ा कैसा जानवर है कि अपने मालिक के लिए, जो उसका मालिक होता है ना, सुभान अल्लाह। अब हमारे तो यहाँ पे घोड़े नहीं है तो हमें इतना पता नहीं है, लेकिन घोड़े की देखे एक फितरत है, घोड़ा और कुत्ता कहते हैं ना बहुत वफादार जानवर, वो घोड़े की फितरत है कि मालिक के कहने पर मालिक का एक एक इशारा समझता है। अब वो पता है पहले जमाने में लोग जंगों में घोड़े इस्तेमाल किया करते थे, घोड़े पे बैठ के जाते थे और जंगे करते थे। तो अल्लाह ताला इस सूरत में फरमाते हैं, सूरह आदियात 3 पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने घोड़े को देखा इतनी तेज दौड़ता है मालिक के लिए, इतनी तेज दौड़ता है, हांपता हुआ जाता है, वो ये नहीं कहता मैंने नहीं अब उठना, अब इतनी सुबह सवेरे मुझे उठा रहे हो। उस जमाने में छापे या हमले जो किए जाते थे सुबह सवेरे किए जाते थे कि जो जिस बस्ती में जाए वहां पे लोग सोए होंगे तो हम जाके वहां पे हमला करेंगे, सोए सोए उनको वहां पे कौन कर लेंगे। तो देखो वो घोड़ा ये नहीं कहता कि मेरे नींद का टाइम है, घोड़ा ये नहीं कहता कि मैं इतनी तेज भागूं अब इसके लिए, घोड़ा ये नहीं कहता कि दुश्मनी तो तेरी है किसी कौम के साथ और लेके मुझे जा रहा है मैदान जंग में, क्योंकि घोड़े भी मारे जाते थे ना उसमें, घोड़े को नेजा मारा तो वो सवार नीचे गिर गया, बस घोड़ा भी मर जाता। अब एनिमल इंस्टिंक्ट बहुत तेज होती है, तो वो एनिमल्स पहचानते हैं कि यहाँ पे खतरा है। आपने देखा होगा जरा सी बिल्ली या उनको कोई खतरा, वो फौरन भागते। अब उसको पता है कि यहाँ पे मुझे मौत आ सकती है, लेकिन फिर भी वो मालिक को लेकर दौड़ता है, दुश्मनों के अंदर चला जाता है, सफेद चीरता हुआ अंदर दाखिल हो जाता है, नेजे हैं तलवारें हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करता कि मेरे मालिक की दुश्मनी है, मेरे मालिक का हुक्म है, तो मुझे कोई परवाह नहीं जान की। कोई जानवर मर जाते हैं, और कई ऐसे घोड़े होते हैं वो अपने मालिक को ऊपर अपनी पीठ पे सवार करके लेकर आते हैं वापस। इससे क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, इसकी वफादारी देखो कि कितना वफादार है मालिक का। और तुम्हें वफादारी नहीं आती थी तो घोड़े से ही सीख लेते कि अल्लाह ताला ने देखो कैसा वफादार ये जानवर बनाया। अगर तुमने वफादारी और गुलामी सीखनी थी ये तुम्हें सिखा सकता था, लेकिन तुमने तो उससे भी वफा ना सीखी कि तुम अपने मालिक के इतने ही वफादार हो जाते। उसके अंदर तो अकल नहीं, समझ नहीं, तुझे तो अल्लाह ने अकल दी, अशरफुल मखलूकात बनाया, और तू अकल लेकर भी हकीर चीजों के पीछे भाग रहा। वो चीजें जो खत्म हो जाने वाली हैं, फानी हैं, इन्होंने किसी से नहीं वफा की, ये किसी के पास नहीं रहती। लोग अपने भरे भराए घर छोड़ के और लोगों के कंधों के ऊपर और कब्रिस्तान चले जाते, भरे हुए घर छोड़ के। तो ये किसी के साथ जाती हैं, ये चीजें ये किसी का साथ देती हैं, फिर तुम इनके पीछे भागते हो, और इनके पीछे भागते हुए तुम अल्लाह को छोड़ते हो। कितनी कमाइयां कर लोगे, कितनी शॉपिंग कर लोगे, कितने घर सजा लोगे। ये जो सारी दुनिया है ना, ये समझ ले मौत, इस मौत ऐसे है जैसे जीरो होता है। ये सारी दुनिया को जब ये मौत आएगी ना, जब इंसान को मौत आएगी तो समझ ले मल्टीप्लाई विद जीरो हो गया। जो भी चीज मल्टीप्लाई विद जीरो करे क्या है उसका आंसर, जीरो। एवरीथिंग विल बी जीरो। कितना भी आप कमा लो, कितना भी आप सजा लो अपने आप को, या जो मर्जी कितनी भी बादशाहते ले लो, जिस दिन मौत आई ना, एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड विद जीरो। जीरो तुम्हारे हाथ में अब कुछ भी नहीं, खाली। इतने बड़े बड़े बादशाह खाली हाथ गए, कोई कुछ साथ लेकर गया, कुछ भी नहीं। तो तुम क्या ले जा सकते हो, क्या ले जाओगे। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को निशानियां दिखाई हैं, और अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाता है लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, और वो गफलत में मुंह मोड़े। इनको ऐसी गफलत छाई भी है, ऐसे मस्त है कि इनका वो शराबी का भी किसी टाइम पे नशा टूट जाता है। इनको दुनिया का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि ये कभी टूटता ही नहीं। इतने दर्द सुना लो, कुरान की तिलावतें सुना लो, कुछ कर लो, लोगों के जनाजे उठते हुए देखते हैं तब भी नहीं होश आते, तब भी हंसते हंसाते हा हा ही हू करते घर आ जाते, उसके बाद फिर वही काम, वही दुनिया, वही ये सब। दुनिया मतलब ये नहीं मैं कह रही कि आप सारा कुछ छोड़ के बस जंगलों में निकल जाओ और तस्बीह पकड़ के करने लगे, ये मतलब है इसका। ये छोटी है, टेम्परेरी है, इसमें रह के भी अल्लाह को नहीं भूलना, इसमें रह के भी उसके हुक्मों को नहीं भूलना, इसमें रह के भी उसके हुक्मों को पीछे नहीं डालना। व्हाट डू आई केयर, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। आज का इंसान क्या कर रहा है, मन चाही जिंदगी गुजार रहा है, जो मेरा दिल चाहे। अब मेरा दिल चाहे चाहे सूद खाने को वो करूंगी, मेरा दिल चाहे बेपर्दगी वो करूंगी, मेरा दिल चाहे बेहयाई देखने को वो करूंगी, मेरा दिल चाहे नमाज ना पढ़ूं नहीं पढ़ूंगी, मेरा दिल चाहे मैं सो के ना उठूं नहीं उठूंगी। अब मेरा जो दिल चाहता मैं करूं, कौन मेरे ऊपर रूल कर सकता है। ये आज के इंसान का ईमान, और ये उसका मजहब, ये उसका दीन है। इस्लाम हमें क्या कहता है, अल्लाह की गुलामी में आओ। तो मन चाहे जिंदगी नहीं गुजार सकते कि जो मेरा दिल चाहे मैं करूं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अल्लाह की गुलामी में आना पड़ेगा। और गुलाम की अपनी फिर कोई मर्जी नहीं होती, याद रखो। 5 दफा जो नमाज पढ़ते हैं वो कहते हैं इय्या का नस्ताईन, झूठ क्यों बोलते हो, अल्लाह मैं सिर्फ तेरी गुलामी करती हूँ। झूठ, सारा दिन नफ्स की गुलामी करते, इधर जान नमाज लपेटा, उधर रिमोट शुरू, इधर जानमाज लपेटा उधर झूठ बोल रहे, इधर जानमाज लपेटा और उधर मैं ऐसी ही गिफ्तें कर रही हूँ, इधर जानमाज लेटा उधर मैं बेपात घर से निकल गई। और मैं कह रही हूँ या का ना पु तू अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी स्लेव, तू मेरा मास्टर। जो अब जाहिर है मास्टर मीन्स जो वो हुक्म देगा मैं वही करूंगी, क्योंकि मैं गुलाम हूं। कोई अपने आप को आप में से गुलाम समझता है? हम तो सारे समझते हैं वी आर फ्री, हम आजाद हैं, हमारे ऊपर कौन हुक्म चला सकता है? हमारे हम किसके गुलाम है? सिर्फ अपने नफ्स के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन माबूद जिसकी पूजा की जाती है वो इंसान का नफ्स है, कि इंसान ने अपने नफ्स को, नफ्स क्या चीज है, व्हाट आई वांट, जो मेरी चाहत है बस वो ही होगा। आई डोंट केयर कि क्या है अल्लाह का हुक्म, क्या है रसूल का हुक्म, आई डोंट केयर। भाई अपनी मर्जी भी तो करनी होती है, दुनिया भी तो हमें साथ लेके चलनी है। कौन आपको कह रहा कि दुनिया छोड़ दो? कोई नहीं कह रहा। दुनिया में रह के आपने अल्लाह की माननी है, ये है उसकी गुलामी, यही तो टेस्ट है। किसने कहा जाओ जंगलों के अंदर जाके जिंदगी गुजारो? किसने कहा कुछ खुशी ना करो? किसने कहा कुछ कपड़े अच्छे ना पहनो? किसने कहा आपको? किसने भी नहीं कहा। इस्लाम तो ये नहीं कहता। हम जब कहते हैं ना नहीं दुनिया भी हमने करनी है, तो हम ये सोचते हैं कि शायद दीन हमें कहता है कि कुछ ना करो, बस फकीर बन के बैठी रहो। नहीं, इस्लाम तो ये नहीं कहता। वो कहता है बस गुलामी करो तो अल्लाह की करो, और किसी की गुलामी ना करो, अपने नफ्स की गुलामी ना करो, इसकी गुलामी से निकलो। ये नफ्स तो कहीं चैन से नहीं बैठने देगा। इसकी तो एक डिमांड होगी, वो पूरी करोगे तो अगली होगी, वो पूरी करोगे तो उससे अगली होगी। ये तो कहीं नहीं चैन से बैठेगा, ये तो आपको भगाता रहेगा। तो एक रब की गुलामी करो। तो जब हम खड़े होते हैं कहते हैं इया का नाबुदु अय्या का नस्ताईन, अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते, सिर्फ तेरी इबादत करते। यही पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, ये शऊर ही नहीं क्या कह रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, हम टेक्स्ट चेक करते हैं, हम फेसबुक चेक करते हैं, हम अपनी ईमेल्स चेक करते हैं, हम आज की खबरें देखते हैं, ताज़ा खबरें क्या हैं। लेकिन हमारी बुक शेल्फ में 30 पारों पे मुश्तमिल एक किताब है, एक अल्लाह का कलाम है। हमने कभी वो बॉदर नहीं किया कि उसमें क्या खबरें लिखी हुई हैं। जिसकी मैं गुलामी कर रही हूँ उसने जाहिर है कोई ऑर्डर, मास्टर कोई ऑर्डर देता है ना, तो गुलाम उसको फिर आगे एग्जीक्यूट करता है कुछ, ठीक है ना। आप चलो गुलाम आपको नहीं पता, नौकर पता है। चलो कोई अब नौकर आप रख लेते क्या करते सारा दिन, तू भी सोफे पे बैठी रहे मैं भी बैठी रहूं। नहीं, नौकर से आपके क्या डिमांड होती है? अब मैं कुछ कहूंगी तो वो करेगी, राइट? इसीलिए आपने उसको नौकर रखा होता है ना। हम कहते हैं हम अल्लाह के गुलाम है, वो अल्लाह ताला हमें कोई हुक्म दे रहा है और हम आराम से बैठे हुए। गुलामी का मतलब ये कि वो कोई कहीं से कोई ऑर्डर आएगा और आपको वो करना है, हमें पता ही नहीं। हमें क्या पता कि उसने क्या कहा, व्हाट डू वी केयर? हमने करना ही नहीं है तो फिर हम क्यों जाने। बाज़ लोग पहले से ये कह देते हैं हमने कौन सा अमल करना है जो हम कुरान पढ़े, तो फिर ये झूठ मत बोलो कि या का ना बोलो, क्योंकि गुलाम को तो कुछ करना ही पड़ेगा। आप नौकर रखे हुए आपके साथ सोफे पे बैठी रहे सारा दिन और कहे कि बस ठीक है आप जो मर्जी कहती रहे, मुझे तो ना समझ आ रही है ना कुछ है, एक कान से सुनूंगी दूसरे से निकाल दूंगी, आप क्या करेंगे? तो कहेंगे जाओ छुट्टी करो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकर। और ये तो नौकर का हाल है, गुलाम तो जर खरीद होता है। तुम कैसे गुलाम हो अल्लाह के, कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है और तुम्हें पता ही नहीं कि उसने क्या हुक्म दिया। अल्लाह ताला तुमसे कुछ डिमांड कर रहा है, डू दिस, और तुम्हें पता ही नहीं क्या, और तुमने पहले से सोचा आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। तुम कैसे गुलाम हो? तो याद रखना आज तो ये जिंदगी गुजर जाएगी, आज तो जैसे तैसे वक्त चला ही जाएगा, आज तो जिंदगी के जिस तरह तुम मन चाहे गुजारना चाहो, रब चाहे गुजारना चाहो, गुजर जाएगी। लेकिन एक वो दिन भी आएगा जब अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म कर देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, इंसान ने समझ लिया कि हमने इसको बेकार ही ऐसे ही पैदा किया, आएगा खाएगा पिएगा और मर जाएगा। नहीं, बेकार नहीं पैदा किया, तुम्हें अल्लाह के सामने जवाब देना। उस दिन फिर जब इंसान देखेगा ना क्यामत की हौलनाकियों को, तो फिर कहेगा यौमा इदिन यकूल इंसान यौमा इदिन अइनल मफर। उस दिन इंसान कहेगा हाय अब भागने की जगह कौन सी है, मैं किधर चला जाऊं भाग के, अब मुझे बचा लो, हाय अब मुझे छुपा लो, अब मैं क्या करूं। उस दिन इंसान ये कहेगा, उस दिन इंसान को अल्लाह ताला बता देगा कि क्या क्या जिंदगी गुजार के आए, क्या तुमने अल्लाह की इबादत की या नहीं की, क्या तुम अल्लाह के गुलाम बन के रहे या नहीं रहे। एक एक बात बता दी जाएगी। तभी तो नाफरमान लोग जिन्होंने अल्लाह ताला को भूल के जिंदगी गुजारी वो कहेंगे या लैता काना दिल कादिया, ए काश मौत मेरा सफाया ही कर देती और मुझे दोबारा ना उठाया जाता। من باثنا من مرقدنا, کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا. اور جو فرما بردار ہوں گے, جنہوں نے اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزاری ہوگی نا, وہ کہیں گے ہذا ما وعد الرحمن, یہ تو رحمان نے تو اس کا وعدہ کیا تھا, اللہ نے تو بتایا تھا کہ یہ ہونا ہے. وصدق المرسلون, اور رسولوں نے سچی بات کہی تھی, انہوں نے بتایا تو تھا کہ یہ ہونا ہے. تم نے سنا نہیں تھا فلاں درس میں تمہیں بتایا گیا تھا, تم نے سنا نہیں تھا فلاں مسجد میں جب تم گئی تھی تو وہاں پہ بتایا گیا تھا, تم نے سنا نہیں تھا فلاں نے یہ بات کہی تھی. لیکن تب بہت لیٹ ہو چکا, اب بہت لیٹ ہو چکا. اب جو وہ یاد کرے گا تو اب اس یاد کرنے کا حاصل کوئی نہیں, جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفجر میں, کلا اذا دکت الارض دکا دکا, ہرگز نہیں جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کے, وجاء ربک والملک صفا صفا, اور تمہارا رب بھی آ جائے گا اور فرشتے بھی نازل ہو رہیں گے. ناؤ گھنٹی بج چکی ہے, فنش, کام ختم. اب تم چاہو بھی اب جا کے میں کر لوں گی, اب ون چانس مجھے مل جائے, نو چانس اینی مور. اب تو فیصلے کا دن ہے, آج تو ریزلٹ کا دن ہے, آج کام کا دن نہیں ہے. عمل کا وقت وہ تھا جو زندگی دنیا کی تمہیں دی گئی تھی, وہ ایک چانس تمہیں ملا تھا, آج کیا ہے ریزلٹ ملنے کا دن. اب وجاء ربک والملک صفا صفا, اللہ بھی آ رہا ہے اور فرشتے بھی, دیکھو صف در صف تمہیں گھیر لیں گے, ارد گرد سب فرشتوں کی صفیں ہوں گی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اور اس دن جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا. حشر کے میدان میں انسان کھڑا ہوا ہے اور جہنم کھینچ کے لائی جا رہی ہے, اور جہنم اتنی زبردست چنگھاڑ, اتنی زبردست چیخ مارے گی, اتنا زور سے چیخے گی کہ لوگ سب سجدے میں گر پڑیں گے, اور ہر ایک پکار رہا ہوگا نفسی 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 نفسی, اے اللہ آج مجھے بچا لے, اے اللہ آج مجھے بچا لے, اے اللہ آج مجھے بچا لے. یہ جہنم آئی ہے, جہنم کو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, آج تک تو اس کی باتیں سنی تھی نا, جہنم جہنم, اور ہم نہیں یہ باتیں سنتے, ہمیں نہ ڈراؤ بھائی, پتہ نہیں ان کو کیا. کسی نے کہا وہ جہنم کی بات سنی, انہوں نے کہا اب ہم نے قرآن سننا ہی نہیں ہے, اب ہم نے نہیں کلاس میں آنا کیونکہ یہ تو جہنم کی بات بتائی. وہ کہیں یا تو اس قرآن میں سے جہنم کی باتیں ہی نکال دو, میں کیا کروں, مجھے تو بتا, جہنم کی آیت آئے گی مجھے تو سمجھانی, نکال دو یہاں سے, اللہ کے عذاب کی آیتیں نکال دو. ہم سب سوچتے نا جنت میرے لیے اور جہنم کافروں کے لیے, بس وہ اگر جنت تمہارے لیے ہی تھی تو تمہارے سے تو زیادہ بہت متقی صحابہ کرام تھے, وہ کیوں اتنا روتے تھے, کیا پرابلم تھی, ان کو نہیں پتا تھا کہ جنت ہمارے لیے, ان کو تو عشرہ مبشرہ, ان کو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بشارتیں دے دی کہ تم جنتی ہو, وہ کیوں اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو تب بھی میں ڈروں گا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ آپ کی بیویاں بھی ساری جنتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنا رو رہی ہیں کہ اونٹ اوڑھنی جو ہے پوری کی پوری بھیگ گئی ہے آنسوؤں سے, تو ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لاڈلی بیوی, آپ کے بستر کے اوپر ان کے اوپر وحی آیا کرتی تھی, آپ کی برات میں اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری ہیں, آپ رو رہی ہیں. کہتے ہیں جاؤ مجھے دھوکا نہ دو, اے کاش میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی, کہ اتنا مشکل ہے وہاں پہ حساب کتاب, بڑا مشکل ہے, کیسے میں حساب دوں گی. حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں, بیوی کی گود میں سر ہے, کہتے ہیں سوچیں ہماری تو سوچیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں, ان کی سوچیں کیا کہ بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور آنسو بہ رہے ہیں, تو بیوی بھی رونے لگی. کہتے ہیں کیوں رو رہی ہے, آپ کو دیکھا میں نے روتے ہوئے تو میں بھی رونے لگی. کہتے ہیں میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس پہ سے گزرنا ہوگا, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میں اس سے پار ہوں گا بھی کہ نہیں, نیچے جہنم ہے اور اوپر یہ پل صراط ہے, پتہ نہیں میں پار ہو سکوں گا کہ نہیں. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے جنت میں چلے جانا, ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے اتنی قربانیاں دی, میں اور آپ کو پتہ نہیں کون سی پریشانیوں میں کہ ہم نے اتنا سا قرآن پڑھ لیا, ہم نے دو نمازیں سجدے ایسے ٹکرے مار لی, ہم نے بس وہ گھر میں درد کرا لیا, بس ہمارا تو ٹھیک ہے سب کچھ, ہمیں کس چیز کی فکر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب باتیں سچی ہیں, کیا خیال سچی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت ہے نا وہ گھیر دی گئی ایسی چیزوں سے جو نفس کے اوپر بہت گراں ہیں, नफ्स को बड़ी मुश्किल लगती है करनी, याद रखो वो रास्ता बड़ा मुश्किल है, वो रास्ता तकलीफों का भी है, उसमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कुछ मुशक्कत करनी पड़ेगी। वो ऐसे सोफों पे बैठ के सारा सारा दिन लेट के नहीं आए मिलेगी जन्नत, वो अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है। तो ये सस्ती इतनी होती कि हमें तो मजे कर करके ही, अगर फन कर करके जन्नत मिल जाती तो उनको क्या जरूरत थी इतनी मुशक्कतें उठाने की, बताए मुझे उनको क्या जरूरत थी, पेट पे पत्थर बांध बांध के फिरते थे वो, अगर मुझे और आपको तो ऐसे ही मिल जानी थी, हम तो सारा दिन एक तो बिस्तर से नहीं उठेंगे, फिर उसके बाद इधर दूर फोन कर लिए, उधर कर लिए, शॉपिंग कर ली, ये कर लिया, नए नए कपड़े पहन लिए, पार्टी कर ली, चलो जी बस अब जन्नत तो हमारी है। वो किस धोखे में हो आप, वो जागो इस धोखे से, ये शैतान का धोखा है। ये ना हो कि आंख खुले तो वहां पर पता चले कि यहाँ पे तो दुनिया ही और है, जिंदगी गुजर चुकी। अल्लाह के बंदो ये इतनी आसान नहीं है जन्नत, ये इतनी आसान नहीं है जन्नत, बड़ी मुश्किल। और ये 70-80 साल की जिंदगी में कोई गम आ जाए ना, तुम कहते हो हाँ ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये कहते हैं ना। और वहां पे कोई जहन्नुम के, किसी को जहन्नुम दिखा दी गई, किसी को जहन्नुम में रहना पड़ गया, तो सोचो वो वक्त कैसे गुजरेगा। ये 70-80 साल नहीं तुमसे गम के गुजरते, परेशानी के गुजरते, बीमारी के गुजरते, तुम हाय हाय करते हो कैसे गुजरेगा ये वक्त, हालांकि कितना छोटा है ये वक्त। वहां पे तो एक दिन जो कयामत का 50,000 साल के बराबर है, वो दिन कैसे गुजारोगे, एक दिन भी अगर जहन्नुम में रहना पड़ गया तो वो वक्त कैसे गुजारोगे, ये बता। कब्र के अंदर तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ गया तो सिर्फ ये बताओ कि उस कब्र के अंदर कौन सी टायलेनॉल है जो तुम्हें दी जाएगी कि तुम्हारे वो दर्द खत्म हो जाए। फिर भी बेहोश है, बेहोश है, लोगों को होश नहीं आता। अब मेरा काम है मैं आपको बता दूं ताकि हुज्जत तमाम हो जाए, कल को आप ये ना कहें खड़े होके वहां पे कि हमें किसी ने नहीं बताया था, आज आपको बता दिया गया। फमन शाह आया, जो चाहे जो चाहे मान जाए, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो ये जबरदस्ती के सौदे ही नहीं। अल्लाह ने आजाद छोड़ा है, कोई किसी को जबरदस्ती ना ला सकता है, ना अल्लाह का हुक्म है। आप आजाद है, आपकी मर्जी है, चाहे तो सीधा रास्ता इख्तियार करे, चाहे तो उल्टा रास्ता इख्तियार करे। लेकिन उस दिन ऐलान हो जाएगा, आज सारे गुल्ले मिले रहो, लेकिन उस दिन ऐलान हो जाएगा वमताज उलियहुमा अय्युहल मुजरिमून, आज अलग अलग हो जाओ मुजरिमों, आज जो नेक है तुम आ जाओ मेरे पास, अल्लाह ताला फरमाएंगे, और जो बाद दफा हो जाओ यहां से, दूर हो मेरे सामने से। जिसने अल्लाह की इबादत की, उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी, आ जाओ मेरी रहमत चले, और जिसने नाफरमानी में जिंदगी गुजारी, चले जाओ दूर हो मेरी रहमत से, दूर हो जाओ। आप क्या सोचते हैं अल्लाह ताला सबको बराबर कर देगा, अफनजालिल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, हम ये सारे सोचते सारे बराबर हो जाने हैं, वो तुमने किया तब भी सही है, नहीं भी किया तो इतनी भी क्या एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत। अल्लाह ताला फरमाते तुम क्या सोचते मैं अपने फरमा बरदारों को नाफरमानों को बराबर कर दूंगा, मालकुम कैफ तक्कुमून, क्या हो गया तुम्हें, तुम कैसे फैसले करते हो, ये कौन सी अदालत का तुमने फैसला लिया, किधर कौन सी किताब में कौन से कुरान में दिखाओ ये लिखा हुआ है कि अल्लाह अपने नाफरमानों को भी और फरमा बरदारों को बराबर कर देगा। अल्लाह ताला इबादत गुजार औरत को भी और उस औरत को भी जो जिसको ना नमाज की परवाह ना रोजे की, उसको बराबर कर देगा। अल्लाह हया वाली औरत को भी और जो बेहयाई के साथ बाहर फिर रही है और मजलिसों की जीनत बन रही है, उसको बराबर कर लेगा। अल्लाह ताला उसको जो रात को उठ के अल्लाह के सामने खड़ी हो जाती है और सजदों में अपने आंसुओं से जमीन को भिगो देती है, उसको और वो जो सारी रात रिमोट लेके तो फिल्में देख रहे हैं, उसको बराबर कर देगा अल्लाह। वो जो हलाल लुक में खा रहा है और हलाल के अंदर उसके पास इतना नहीं है कि कोई लेविश जिंदगी गुजारे, उसको और वो जो हराम में वेकेशन पे जा रहे हैं उनको बराबर कर देगा। वो क्या हो गया तुम्हें, एक वो जो आसाइशों में रहे और वो इस खुशफहमी में रहे कि हमें जन्नत ऐसे ही मिल जाए, उसको और वो जो डर डर के सारी जिंदगी रहा कि अल्लाह मुझे तेरे आगे खड़े होना, उन दोनों को बराबर कर देगा अल्लाह ताला फरमा रहे नहीं। तुम कहां से ये फैसले ला रहे हो बताओ, कौन सी पंचायत है, किसने तुम्हें ये बताया, किस नबी ने तुम्हें बताया, या किस किताब में अल्लाह की तरफ से ये हुक्मनामा आया, ये फैसला आया, खुद ही फैसले कर रहे हो। तो इस धोखे से निकले, ये धोखा है, ये पट्टी बंधी हुई है ना ये दुनिया की, इस वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए आंखों में मिर्चें पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, कुछ नजर नहीं आता ना, तो ये दुनिया की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई, अब इस पट्टी पे नजर ही नहीं आ रहा कि हकीकत क्या और धोखा क्या। और हम इसको जो धोखा है उसको हकीकत समझ रहे हैं कि ये रियलिटी है, दिस इज नॉट रियलिटी। रियलिटी वो है जो आफ्टर दिस लाइफ है, आफ्टर लाइफ। सारे कहते हैं हम आफ्टर लाइफ पे ईमान लाते हैं, लेकिन हम में से कोई उसके लिए कोई मेहनत करने को तैयार नहीं, और सोचते वो मुफ्त में मिल जाएगी। अरे दुनिया के लिए मेहनत करो, 16 साल की पढ़ाई भी करो, दूर भी जाके पढ़ना पड़े तो वहां पे भी पढ़ो, माँ बाप से जुदाइयां भी बर्दाश्त करो, घरों से भी दूर रहो, कितने पापड़ बेलो, लेकिन दुनिया के लिए मेहनत करो। ये मेहनत से मिलती है, ये हमारा अकीदा है, है? और आखिरत वो दुआओं से ही मिल जानी है। हमने दुआ करनी है अल्लाह जन्नत दे देना, रमजान के रमजान में हमने कुरान खोल लेना तो जन्नत इसी से मिल जानी है। हालांकि अल्लाह ताला ने क्या बताया हमें कि दुनिया मुकद्दर से मिलती है और आखिरत मेहनत से मिलती है। इसको तो जो मुकद्दर में लिख दिया अल्लाह ने इतना तुझे दे ही देना, और जो मेहनत जिसके लिए करनी है उसको तूने दुआओं पे छोड़ दिया। उसके लिए कहते हैं उसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं। अगर कोई मेहनत कर भी रहा हो तो उससे पूछते तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या बात हो गई? अल्लाह गफूर रहीम है, तुम ऐसी डरती जा रही। तो फिर मेरा ख्याल हमें कुछ ज्यादा नजर आ गया है कुरान में लिखा हुआ या हदीस में, जो सहाबा को नहीं ये पता चला था कि अल्लाह गफूर रहीम है, हमको नहीं पता चला था। पहले तो हमारे ऊपर से कोई नया इंकशाफ हुआ, अल्लाह गफूर रहीम तो है, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है, उसकी पकड़ से बचना, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। जिसका हमें कोई क्या खौफ है, हम ये सोचते हैं कि जो आज नहीं जिसने पकड़ा वो कल भी कहां पकड़ेगा, नहीं, वो उसकी मोहलत से उसकी ढील से धोखा ना खाना। आज तो उसने छोड़ा हुआ है, जाओ जो मर्जी करो, वो देख रहा है, देखता है मेरी नाफरमानी कर रहे हैं, देखता है कह रहे हैं हमारे पास अल्लाह के लिए कोई वक्त नहीं है, देखता है, सब देख रहा है, लेकिन ये उसका सबर है कि वो आज नहीं पकड़ता। वरना इसी वक्त हम कितने ही गुनाह के काम ऐसे करते हैं कि उसी वक्त छत हमारे ऊपर गिर जाए और हम सब खत्म हो जाए, जलजला आ जाए, जमीन फट जाए और हम अंदर चले जाए। हमारे गुनाहों का ये हाल है। अल्लाह ताला के एहसानात के मुकाबले में हमें तो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए थी, और हमारी तो सारी की सारी जिंदगी अल्लाह को भूल के गुजरती है। तो एक लम्हे जिसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए थी, हम तो सारा दिन करते हैं और डरते भी नहीं है, तो क्या वो नहीं पकड़ सकता था हमें? पकड़ सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं, एक दिन आएगा, उस दिन मैं इसको बताऊंगा, उस दिन सब पर्दे खुलेंगे, उस दिन ये पट्टी खुद ही खुल जाएगी, या तो मौत के झटके पे ही खुल जानी है, सब हकीकत सामने आ जाएगी। अलहाका मलहाका वमा अदराका मलहाका, अल्लाह ताला फरमाते हकीकत हकीकत, और तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता भी नहीं चल सकता हकीकत है क्या। तो ये जो दुनिया में गुम हो ना, इतनी इतनी बड़ी कौमें आई, उन्होंने कहा हमारे जैसा कोई है ही नहीं, देखो अल्लाह ने कैसे निकाल के रखा, उन्होंने इसी दुनिया को सब कुछ समझ लिया। तो हकीकत ये नहीं है, हकीकत वो है जो इसके बाद है, उसके लिए मेहनत करो, वो मेहनत के बगैर नहीं मिलेगी। अगर उसके लिए पसीना बहाना पड़े तो बहाओ, आज तुम इन घरों के लिए बहा रहे हो, ये कल अपने बच्चों के लिए छोड़ जाओगे, उन्होंने क्या कहना, उनको याद भी नहीं रहना किसी ने हमारे लिए दिन रात एक किए थे, किसी ने हमारे लिए खून पसीना बहाया था, किसी ने कितने मेहनतें की थी हमारे लिए, वो तो दुनिया में ही कह देते आपने हमारे लिए क्या किया, ये तो सारे ही माँ बाप करते, आपने कौन सा ऐसा कर लिया, वो आपके मरने के बाद वो याद रखेंगे, है आप ये सोचते हो? तो इस दुनिया में कोई नहीं याद रखता, यहां के लिए मेहनत करोगे आपकी औलादें आपको एक लम्हे के लिए भी याद नहीं रखेंगी, लेकिन आखरत के लिए मेहनत करोगे, वहां के लिए मेहनत करोगे ना, तो बहुत कुछ पा जाओगे। कामयाबी उसी के लिए जो इस दुनिया में लम्हा लम्हा ऐसे गुजारे कि ये मुझे वन चांस मिला, वन चांस, मुझे एक लम्हा भी ना जाया नहीं करना, एक एक लम्हे के मेहनत करके मैं अपनी आखिरत के करोड़ों करोड़ों सालों की भलाई कामयाबी खरीद सकती हूं, मैंने इसको जाया नहीं करना, ये वन चांस है, ये मुझे एक चांस मिला है, अब मैंने अपनी जिंदगी बदलनी है, अब मैंने मेहनत करनी है। इसके इसको इसका धोखा समझते हुए अपनी आखरत के लिए, अपनी जन्नत के लिए मेहनत करो, उसके लिए कमर बांधो। बहुत कर ली आपने दुनिया के लिए मेहनत, बहुत कर ली, आप किसी दिन ये भी कहो कि अब मैं वहां के लिए भी करके देखती हूँ, बहुत कर ली यहाँ पे दोस्तियां, किसी दिन अल्लाह के साथ भी दोस्ती करके देखो, फिर वो आपको बताएगा कि वो कैसा दोस्त है, दुनिया में भी दोस्त, कब्र में भी दोस्त, हशर में भी दोस्त। ये दोस्तियां तो यहीं रह जाएंगी। जिस दिन आप यहाँ से गए, कब्र में तो तन्हाई होगी, ना ये मजलिस ना दोस्त है, ना ये कुछ, उस दिन बेगम साहिबा भी और नौकरानी भी सारी साथ साथ ही पड़ी सो रही होंगी। ये धोखे से निकलो और अपनी आखरत के लिए बनाओ। पता नहीं कितनी जिंदगी रह गई है, मगर अल्लाह ताला को वो बंदा बड़ा पसंद आता है जो उसकी तरफ लौट आए, तौबा कर ले कि अल्लाह आज तक जो मैंने किया ना, वो तो किया तुझे भूल के मैंने जिंदगी गुजारी, आज आज मुझे होश आ गई, अल्लाह आज मेरे सामने हकीकत खुल गई, ए अल्लाह आज मैं तौबा करती हूँ। अल्लाह को बड़ा पसंद आता है वो। एक किस्सा एक आदमी का कि उसके बहुत सारे बेटे थे, तो सारे बेटे बड़े फर्मा बरदार थे, सिर्फ एक बेटा था ना वो बहुत नाफरमान था। तो वो जो सारे बेटे बड़े फर्मा बरदार थे, बहुत बाप को खुश करते थे, एक बेटा जो नाफरमान था उसकी वजह से वो बड़ा वो तंग रहता था। एक दिन वो बेटा आया, उसने कहा मुझे जो भी बंटवारा करना है करो, मेरी जायदाद और उसका मैं लेके जाऊं। वो अपना सारा हिस्सा लेके चला गया, बहुत साल गया रहा, और फिर एक दिन वो वापस आया सब कुछ लुटा पुटा के। जब वापस आया तो बात की, अब सारी मोहब्बत सारी तवज्जो उस बेटे की तरफ हो गई, कितने दिनों बाद ये वापस आया। जब तो बाकी बेटे कहने लगे कि हम आपके इतने सादात सादत मंद, आपके इतने फर्मा बरदार, आप सारी इसके ऊपर तवज्जो कर रहे हैं, इससे मोहब्बत कर रहे हैं। तो बाप ने कहा कि ये इतने दिनों के बाद लौट के आया है, तुमने देखा है कि अगर एक चरवाहे की 100 भी बकरियां भेड़े हों और एक बकरी सिर्फ भेड़िया ले जाए, तो वो उसके पीछे भागता है 100, वो बाकी 99 को छोड़ के है। तो यही मिसाल अल्लाह की मोहब्बत की है। अल्लाह ताला उसके फरमा बरदार तो हैं ही हैं, वो तो उसको पता है कि ये तो मेरे हैं ही हैं, ये जो एक मेरे से दूर जा रहा है ना वो अल्लाह की तरफ पलटता है, तो अल्लाह ताला सारी शफकत सारी मोहब्बत सारी तवज्जो उसके ऊपर कर देते हैं। तो अल्लाह की तरफ पलटो, अपने रब को जानो, उसको समझो, उसको अपना रब बनाओ, मत बनाओ दुनिया को, पैसे को, चीज़ों को, ये सब पुरानी हो जाने वाली है, सब खत्म हो जाने वाली है। वो है हई और कयूम जात, उससे मोहब्बत करो जो आपसे मोहब्बत करता है। यही है हल जजाल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ हो सकता है? जिसने आपके ऊपर एहसान किया आपको भी चाहिए एहसान का मामला करो, आपको भी चाहिए जिसने आपको नेमते दी आपको भी चाहिए उसके आगे झुक जाओ। और ये आज कह दो कि या अल्लाह ताला आज तक मैं भूले हुए जिंदगी गुजारती रही, या अल्लाह आज मैं तेरी तरफ पलटती हूँ, तू मुझे कबूल कर ले और मेरी तौबा को कबूल कर ले। तो सारी बात का हासिल ये था, अगर आपको कुछ बात समझ आई है तो आज घर में तन्हाई में ज़रूर अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, ज़रूर अल्लाह ताला के सामने पिछली ज़िंदगी पे तौबा करके अगली ज़िंदगी बदलने के लिए सोचें कि मैंने किस तरह से अल्लाह की फरमाबरदारी में आना है, और मैंने उसके कलाम को समझना है कि मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है, मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, क्योंकि मैं उसकी गुलामी करना चाहती हूँ और मैंने बहुत कर ली दुनिया की गुलामी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल करे कि आप लोग अपनी मसरूफियात अपने धंधे छोड़ के अल्लाह की बात सुनने के लिए आए, अल्लाह ताला आप लोगों का बैठना कबूल फरमाए। और ये भी अल्लाह ताला की किसी के साथ भलाई होती है कि वो उसको कुछ सुनवाना चाहता है तो उसको ले आता है कहीं से, ये अल्लाह की तरफ से भलाई होती है किसी के लिए। वरना कई लोग हैं प्लान बनाते हैं, आखिर टाइम पे कोई ऐसा मसला हो जाता है नहीं आ पाते। कई लोग होते हैं कि वो चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मतलब इस तरफ को आ पाते। अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको अपने दीन की समझ अता फरमाता है। तो ये हमारे क्लास के कुछ हैं फ्लायर, जो हमारा नया कोर्स स्टार्ट हुआ है कुरान को सीखने का, इसको समझने का। हम किसी को भी नहीं कहते कि कोई अमल करें, आपकी अपनी मर्जी, आप अमल करें या नहीं करें ये आपका और अल्लाह का मामला है। हाँ, हमारा ये काम है कि हम आपको दावत दे दें और आपको ये कहें कि आओ और अल्लाह का कलाम सीखो, इसको समझो। ये फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके पैसे नहीं है, कोई इसका हदिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपका वक्त, ये हम चाहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा वक्त अल्लाह के लिए निकालें। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں اللہ, ہم اپنے سارے گناہوں کا تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں, اپنی تمام کمزوریوں کا, کوتاہیوں کا, کمیوں کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اس گناہوں والی زندگی سے نکال کے ہمیں اپنی فرما برداری والی زندگی میں لے آ. اللہ نافرمانیوں کے کاموں کو اور اللہ نافرمانی کی زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہ اپنی فرما برداری عطا فرما, اپنی غلامی عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت ڈال دے اور اللہ نیکیوں سے محبت ڈال دے. اللہ نیکی کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ جتنی زندگی گزر گئی اب تیری نافرمانی میں اور تجھے بھول کے, اللہ اس کو معاف فرما دینا. اللہ اب ہمارا رخ اپنی طرف موڑ لے, ہماری توجہ اپنی طرف کر لے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے. یا اللہ ہمیں آخر کو تیرے ہی پاس آنا ہے. اللہ ہم سے اچھا معاملہ فرمانا اس وقت. اللہ ہم سے اچھا معاملہ فرمانا, ہم سے آسان معاملہ فرمانا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں رد نہ کرنا, اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ دھتکارنا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا. یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا, ہم نے بہت ساری نافرمانیاں کی, ہم بہت سارے گناہ کیے اللہ, بہت سے آکاریاں کیے, تو ہمیں معاف فرما دینا. یا اللہ تو پردہ پوشی فرمانے والا, اللہ ہماری پردہ پوشی فرما دینا. تو ستار العیوب, اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لینا, ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لینا. یا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے میں سے ہمارے گناہوں کو مٹا دینا. اللہ پردے میں اس دن اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کرنا, اللہ ہمیں لوگوں میں رسوا نہ کرنا, اللہ ہمیں لوگوں میں رسوا نہ کرنا. اللہ تو ہمارے کھلے چھپے کو, ظاہر باطن کو, ہماری تنہائی اور اللہ ہمارے مجموعوں کی باتوں کو, سب کو جاننے والا ہے, ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. اللہ تو ہمارے ہر ہر عمل سے واقف ہے, تو ہم سے معاف فرما دینا, ہم سے درگزر فرما دینا, ہم سے درگزر فرما دینا. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. جتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ پسند کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے, اللہ قرآن کی خدمت کرنے والا بنا دے, اپنی دین کی خدمت کا ہم سے لے لے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنا, سمجھنا, اس پہ عمل کرنا آسان بنا دے. یا اللہ تعالیٰ مرتے دم کلمہ نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ جان کنی کے عذاب سے بچانا, اللہ جان کنی کے عذاب سے بچانا. اللہ تعالیٰ موت کے وقت کی ڈبکیوں بے ہوشیوں سے بچانا, موت کی سختیوں سے بچانا. اے ہمارے رب موت کی سختیوں سے بچانا, اللہ قبر کے عذاب سے بچانا. منکر نکیر کا حساب کتاب آسان کر دے, ہماری قبروں کو کشادہ فرما, اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا, ہمارے فوت شدگان پہ اپنا رحم فرمانا, ہمارے فوت شدگان کے درجات بلند فرمانا, ان کی مغفرت فرمانا. اللہ ہم بہت جلدی شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں, بہت جلدی نفس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اللہ شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھ, اللہ اپنی پناہ میں ہمیں لے لے, اپنی پناہ میں ہمیں لے لے. اللہ ہمیں چھوڑنا نہ, ہم پھر دنیا کی طرف دوڑ جاتے ہیں. اللہ ہمارا دل پھر اسی میں جا کے لگتا ہے, تو ہمیں اپنی طرف کر لے. اللہ ہمارا رخ اپنی طرف کر لے. اللہ ہمیں دنیا کا غلام نہ بنانا, اللہ ہمیں اپنا غلام بنا دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے در در کا غلام نہ بنانا, صرف اپنے در کا غلام رکھنا. یا الہی ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں حاصل فرمانا, جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی اس کا بہترین اجر عظیم ان کو عطا فرمانا. اللہ ان کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا, ان کی ہر مشکل آسان فرما دینا, ان کی ہر آزمائش دور فرما دینا, ہر تکلیف دور فرما دینا. جو حاضرین مجلس ہیں, جو چل کے آئے, اللہ سب کا آنا اور جانا قبول فرمانا, اللہ سب کا آنا اور جانا قبول فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين.